एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतार रहे हैं जिसने ना सिर्फ एक बहुत बड़ा कारोबारी साम्राज्य खड़ा किया बल्कि ऐसा करने का तरीका ही बदल दिया।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सर रिचर्ड ब्रांसन की
और उनकी आत्मकथा लूजिंग माई वर्जिनिटी। ये नाम ही अपने आप में काफी अलग है।
हाँ, और ये किताब भी, ये सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, ये तो एक रोमांचक सफर है। रिचर्ड ब्रांसन जो 1950 में जन्मे, एक ब्रिटिश उद्यमी, निवेशक, परोपकारी भी,
और वर्जिन ग्रुप के संस्थापक, मतलब 400 से ज्यादा कंपनियां, ये तो कमाल है। संगीत, यात्रा, टेलीकॉम, यहाँ तक कि स्पेस टूरिज्म भी।
जी, लेकिन जो बात उनकी कहानी को खास बनाती है वो शायद उनका सफर है। उनकी शुरुआत काफी चुनौतियों भरी थी।
हाँ, और शायद इसीलिए उनकी कहानी आज भी इतनी मायने रखती है ना। एक लड़का जो डिसलेक्सिया से जूझ रहा था, स्कूल की पढ़ाई जिसे रास नहीं आई।
बिल्कुल, स्कूल ड्रॉप आउट थे वो, और कैसे उन्होंने इन संघर्षों को ही अपनी ताकत बना लिया।
उन्होंने जैसे बिजनेस की दुनिया को एक खेल की तरह देखा, नियमों को तोड़ा, अपने नियम बनाए।
सही कहा, विद्रोह, गजब की ग्राहक सेवा और ये मजबूत विश्वास कि काम मजेदार होना चाहिए, इसी पर उन्होंने अपना पूरा ब्रांड खड़ा किया।
तो ये कहानी सिर्फ पैसा बनाने के बारे में नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है प्रमाणिक लीडरशिप की, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की और सबसे बढ़कर लोगों की सच्ची परवाह करने की।
ये दिखाती है कि कैसे इंडस्ट्रीज में क्रांति लाई जा सकती है, दुनिया को ज्यादा रंगीन, जुड़ा हुआ और शायद ज्यादा मानवीय बनाया जा सकता है।
हाँ, और किताब का जो मूल विचार है वो यही है कि जिंदगी पर्सनल हो या प्रोफेशनल, एक बड़ा एडवेंचर होनी चाहिए। परंपराओं को चुनौती दो, जोखिम उठाओ और मजे को प्राथमिकता दो।
मतलब बिना वो क्रूर कॉर्पोरेट तरीकों के भी सफल हो सकते हैं।
बिल्कुल, जुनून, सम्मान, कमजोरियों को ताकत बनाना, और वो उनका मशहूर रवैया, स्क्रू इट, लेट्स डू इट।
तो चलिए उनकी इस यात्रा को शुरू से देखते हैं। उनके शुरुआती साल कैसे थे? बचपन ने उन्हें कैसे गढ़ा?
उनका बचपन इंग्लैंड के सरी इलाके में बीता, और जैसा आपने कहा, डिसलेक्सिया, स्कूल में काफी मुश्किलें आईं, पढ़ने में दिक्कत, नंबरों में कन्फ्यूजन।
पारंपरिक पढ़ाई उनके लिए मुश्किल थी,
बहुत मुश्किल, लेकिन शायद इसी चुनौती ने उन्हें ज्यादा लचीला और लीक से हटकर सोचने वाला बनाया।
और उनके माता पिता, सुना है उनकी माँ का काफी प्रभाव था।
हाँ, उनकी माँ ईव ब्रांसन, वो खुद एक पूर्व बैले डांसर और ग्लाइडर पायलट थीं, काफी निडर और अपरंपरागत सोच वाली महिला।
अच्छा,
वो बच्चों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बहुत बढ़ावा देती थीं। एक किस्सा है कि वो रिचर्ड को बचपन में घर से काफी दूर छोड़ देती थी ताकि वो खुद रास्ता ढूंढना सीखे।
अरे वाह, ये तो काफी अलग परवरिश है। इस माहौल और डिसलेक्सिया की वजह से उनमें कुछ अलग हुनर भी विकसित हुए होंगे।
जरूर, क्योंकि उन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कत थी तो उन्होंने बहुत जल्दी दूसरों से काम निकलवाना, मतलब डेलीगेशन सीख लिया।
अच्छा,
मुश्किल चीजों को आसान बनाना सीख लिया, और लोगों से जुड़ने की कला, ये उनमें गजब की थी, वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए।
सुना है उनके हेडमास्टर ने तो भविष्यवाणी भी कर दी थी।
हाँ, मजाक में कहा था कि ये लड़का या तो जेल जाएगा या करोड़पति बनेगा।
और वो करोड़पति बने।
स्कूल तो उन्होंने छोड़ दिया था, फिर क्या किया?
स्टील स्कूल में भी पढ़ाई में मन नहीं लगा, लेकिन वो बिजनेस वाला कीड़ा, वो जाग चुका था। सिर्फ 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा और एक मैगजीन शुरू की, स्टूडेंट।
16 की उम्र में मैगजीन? हाँ, और ये कोई छोटी मोटी स्कूल मैगजीन नहीं थी, ये युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय आवाज बनने की कोशिश थी। वियतनाम युद्ध, स्टूडेंट राइट्स जैसे मुद्दों पर बात करती थी।
अच्छा, बड़े लोगों के इंटरव्यू भी किए?
हाँ, मिक जैगर जैसे नाम। यहीं उन्होंने पैसा जुटाना, मार्केटिंग, लोगों को मनाना, ये सब सीखा। और एक अहम सबक, जुनून पहले, मुनाफा बाद में। और ये कि ब्रांड की भी एक अपनी पर्सनालिटी हो सकती है।
इसी जुनून से फिर वर्जिन का नाम जुड़ा?
हाँ, मैगजीन के लिए पैसे जुटाने और विज्ञापन की जरूरतों से ही वर्जिन मेल ऑर्डर का आइडिया आया, डिस्काउंट पर रिकॉर्ड बेचने का।
और ये वर्जिन नाम?
वो इसलिए क्योंकि वो सब इस बिजनेस में बिल्कुल नए थे, अनुभवहीन थे। उन्हें लगा यही अनुभवहीनता उनकी ताकत बन सकती है, फ्रेश सोच।
फिर आया पहला वर्जिन रिकॉर्ड स्टोर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर।
हाँ, और वो सिर्फ एक दुकान नहीं थी, वो एक कल्चरल सेंटर जैसा बन गया। आरामदायक बैठने की जगह, हेडफोन लगा के गाने सुनो, जानकार स्टाफ,
मतलब ग्राहक अनुभव पर जोर।
बिल्कुल, शुरू से ही। और यही उनकी सफलता का एक बड़ा राज बना।
लेकिन शुरुआत हमेशा आसान नहीं होती, वो टैक्स वाला मामला क्या था?
हाँ, वो एक बड़ा झटका था। बिजनेस बचाने के चक्कर में उन्होंने एक्सपोर्ट किए जाने वाले रिकॉर्ड्स पर अवैध रूप से टैक्स बचाया और पकड़े गए। एक रात जेल में भी बितानी पड़ी।
ओहो,
वो काफी डरावना अनुभव था, लेकिन इसने उन्हें एक बड़ा सबक सिखाया। बिजनेस हमेशा पूरी ईमानदारी से करना है। ये शुरुआती ठोकर कह सकते हैं बहुत जरूरी साबित हुई।
इस झटके से उभरकर फिर उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा दांव खेला, वर्जिन रिकॉर्ड्स लेबल की शुरुआत।
हाँ, उन्होंने एक पुरानी थोड़ी जर्जर सी संपत्ति खरीदी, उसे एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बदला, द मैनोर स्टूडियो, और फिर अपना पहला बड़ा रिस्क लिया। एक अनजान म्यूजिशियन को साइन किया, माइक ओल्डफील्ड।
माइक ओल्डफील्ड, ट्यूबुलर बेल्स वाले?
वही। वो एल्बम इतना अनूठा था कि सारी बड़ी म्यूजिक कंपनियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था।
अच्छा।
ब्रांसन ने उसे अपने नए लेबल वर्जिन रिकॉर्ड्स पर रिलीज किया और नतीजा जबरदस्त हिट, लाखों कॉपियां बिकी। इसने वर्जिन साम्राज्य की नींव रखी।
ये दिखाता है कि जहां दूसरे खतरा देखते हैं वहां मौका भी हो सकता है।
बिल्कुल। और इस कामयाबी ने उन्हें और हिम्मत दी। इसके बाद उन्होंने सेक्स पिस्टल्स जैसे विवादास्पद बैंड को साइन किया।
हाँ, उनसे तो सब डरते थे।
और इसी ने वर्जिन की वो बागी व्यवस्था विरोधी छवि को और मजबूत किया।
और फिर आया एक बिल्कुल अलग मोड़, एयरलाइन इंडस्ट्री, वर्जिन अटलांटिक। ये कैसे हुआ, म्यूजिक से सीधा एयरलाइन?
इसकी कहानी भी बिल्कुल ब्रांसन स्टाइल की है। 1984 में वो कहीं जा रहे थे, प्यूटोरी को शायद, और उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई।
तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने फौरन एक प्लेन चार्टर किया और बाकी फंसे हुए यात्रियों को टिकट बेच दिए।
मजाक में प्लेन का नाम रख दिया वर्जिन एयरवेज।
क्या बात है, वहीं से आइडिया क्लिक किया, क्यों नहीं एक ऐसी एयरलाइन शुरू की जाए जो यात्रियों को बेहतर अनुभव दे, मजेदार हो।
लेकिन सामने तो ब्रिटिश एयरवेज जैसा पहाड़ था।
हाँ, बहुत बड़ा मुकाबला था, लेकिन उन्होंने चुनौती ली। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, दोस्ताना सर्विस, थोड़ी मस्ती, ऐसी चीजें जो उस वक्त नई थीं, और एयरलाइन चल निकली।
लेकिन बीए को ये पसंद नहीं आया होगा।
बिल्कुल नहीं। और यहीं से शुरू हुआ वो कुख्यात डर्टी ट्रिक्स कैंपेन।
हाँ, उसके बारे में सुना है, काफी गड़बड़ की थी बीए ने।
बहुत। वर्जिन के कंप्यूटर हैक करना, उनके यात्रियों को बहकाना, मीडिया में झूठी अफवाहें फैलाना, ये वर्जिन के लिए बहुत मुश्किल दौर था।
इसे कैसे झेला ब्रांसन ने? कंपनी डूब भी सकती थी।
हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें एयरलाइन बचाने के लिए अपना प्यारा वर्जिन रिकॉर्ड्स बिजनेस बेचना पड़ा। सोचिए कितनी बड़ी कुर्बानी थी।
ओहो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
नहीं, उन्होंने बीए पर मानहानि का मुकदमा ठोका, लंबी लड़ाई लड़ी और जीते भी। इस जीत ने वर्जिन को उस अंडरडॉग के रूप में स्थापित कर दिया जो बड़े मगरमच्छों से भी लड़ सकता है और जीत सकता है।
रिकॉर्ड लेबल बेचने के बाद उनका ध्यान कहाँ गया? बिजनेस तो फैलता गया।
हाँ, उन्होंने फिर डाइवर्सिफाई किया। एयरलाइंस तो थी ही, फिर ट्रेनें आईं, वर्जिन रेल जो खैर काफी विवादों में भी रही, फिर टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज,
और वो अंतरिक्ष वाला सपना वर्जिन गैलेक्टिक।
हाँ, वो उनका सबसे बड़ा सपना शायद। और बीच में उन्होंने वर्जिन कोला भी लॉन्च किया था जो चला नहीं, लेकिन ये दिखाता है कि वो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटे।
और इस दौरान उनकी अपनी भूमिका कैसे बदली? वो अब सिर्फ उद्यमी तो नहीं रहे होंगे?
नहीं, वो धीरे धीरे रोजमर्रा के मैनेजमेंट से हटकर ब्रांड एम्बेसडर बन गए, एक रणनीतिकार, एक विजनरी। लेकिन वो रोमांच वाला पहलू वो बना रहा।
हाँ, वो गुब्बारे वाली यात्राएं।
बिल्कुल, हॉट एयर बलून से अटलांटिक और प्रशांत महासागर पार करने की कोशिशें, जानलेवा थी वो, हिम्मत की परीक्षा थी। लेकिन इन कारनामों ने वर्जिन ब्रांड को साहस और एडवेंचर का पर्याय बना दिया।
और उनका परोपकार वाला काम, वर्जिन यूनाइट।
हाँ, वो भी उनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है। वैश्विक समस्याओं पर काम करना, रिन्यूएबल एनर्जी, स्वास्थ्य सेवा, न्याय सुधार, ये दिखाता है कि उनके लिए बिजनेस का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है।
और निकर आइलैंड, वो उनकी निजी जगह।
हाँ, वो उनका अभयारण्य है, परिवार के लिए, सुकून के लिए, स्थिरता के लिए एक जरूरी जगह।
तो अगर हम ब्रांसन के मूल दर्शन, उनके काम करने के तरीके को समेटना चाहें तो क्या चीजें उभर कर आती हैं?
सबसे पहली बात तो ये कि उनके लिए काम और जिंदगी अलग अलग डब्बे नहीं है। बिजनेस एक एडवेंचर है, जिंदगी का ही एक विस्तार। उनका मानना है कि अगर काम में मजा नहीं आ रहा तो शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं।
जुनून और मजा, ये बहुत जरूरी है उनके लिए।
बहुत। और दूसरी चीज, जोखिम लेना, कैलकुलेटेड जोखिम।
हाँ, ये तो उनकी पहचान है। लेकिन जैसा आपने कहा, कैलकुलेटेड, बिल्कुल, किताब का टाइटल ही जोखिम का इशारा है। स्कूल छोड़ना, एयरलाइन शुरू करना, सब बड़े जोखिम थे, लेकिन उनका एक सिद्धांत था, प्रोटेक्ट द डाउनसाइड। मतलब ये देखो कि अगर ये फेल हुआ तो क्या पूरा ग्रुप डूब जाएगा, अगर नहीं तो चलो करते हैं।
और असफलता से डरना नहीं,
उसे गले लगाना, सीखना। वर्जिन कोला फेल हुआ, ठीक है, सबक सीखा, आगे बढ़े।
उनका वो फलसफा स्क्रू इट लेट्स डू इट यही तो है।
और वो हमेशा बड़ी स्थापित कंपनियों से भिड़ जाना, अंडरडॉग वाली भूमिका।
हाँ, ये उनकी रणनीति का हिस्सा रहा है, चाहे म्यूजिक हो, एयरलाइन हो या बैंकिंग। बड़े एकाधिकार को चुनौती देना, कैसे? इनोवेशन से, ग्राहक पर जबरदस्त फोकस करके और पीआर का स्मार्ट इस्तेमाल करके। लोगों को ये डेविड बनाम गोलियात वाली कहानी पसंद आती है।
उनका लीडरशिप स्टाइल भी काफी अलग है, लोगों पर फोकस,
पूरी तरह पीपल सेंट्रिक। उनका सीधा सा मंत्र है, अपने कर्मचारियों का ख्याल रखो, वो आपके ग्राहकों का ख्याल रखेंगे। वो स्टाफ को सशक्त बनाने, उनसे सीधे बात करने, एक मजेदार माहौल बनाने में यकीन रखते हैं।
उनका वो क्रम भी दिलचस्प है, कर्मचारी पहले, ग्राहक दूसरे, शेयर होल्डर तीसरे।
हाँ, ये पारंपरिक सोच के बिल्कुल उलट है, पर उनके लिए काम करता है। उनका मानना है कि ये मानवतावादी नजरिया ही उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है।
और वर्जिन ब्रांड, वो तो जैसे ब्रांसन का ही आईना है।
बिल्कुल, ब्रांड की पूरी पर्सनालिटी ब्रांसन से जुड़ी है, साहसी, मजेदार, अनौपचारिक, ग्राहक केंद्रित। उनके वो स्टंट्स, वो सिर्फ पब्लिसिटी नहीं थे, वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग थे। ये दिखाता है कि प्रामाणिकता, असली होना ही सबसे अच्छा मार्केटिंग टूल है।
और वो बात जो बहुत से लोगों को प्रेरणा दे सकती है, अपनी कमजोरी को ताकत बनाना, डिस्लेक्सिया वाली बात।
हाँ, डिस्लेक्सिया ने उन्हें मजबूर किया कि वो चीजों को सरल रखें, बड़ी तस्वीर पर फोकस करें, दूसरों को काम सौंपने में माहिर बने, क्योंकि वो बारीकियों में नहीं उलझ सकते थे। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सीमाएं हमें अनोखी ताकतें दे सकती हैं।
और आखिर में उनका वो विचार अंतरात्मा के साथ पूंजीवाद, मतलब बिजनेस से भलाई भी हो सकती है।
हाँ, उनका मानना है कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं है, वो सकारात्मक बदलाव ला सकता है और साथ ही लाभदायक भी हो सकता है। वास्तविक समस्याओं का समाधान करना, समाज के प्रति जिम्मेदार होना, ये उनके लिए जरूरी है।
उनकी जिंदगी में इतने सारे मोड़ आए, अगर हम तीन सबसे निर्णायक मोड़ों की बात करें जिन्होंने उनकी दिशा ही बदल दी, तो वो कौन से होंगे?
तीन चुनना मुश्किल है, पर कोशिश करती हूँ। पहला, मेरे ख्याल से 1977 में सेक्स पिस्टल्स को साइन करना।
हाँ, वो काफी बड़ा कदम था।
बहुत बड़ा। उस वक्त वो बैंड इतना विवादास्पद था कि कोई बड़ा लेबल उन्हें छूने को तैयार नहीं था, उनकी प्रतिष्ठा खराब थी।
लेकिन ब्रैनसन ने उसमें क्या देखा?
उन्होंने उसमें एक मौका देखा, एक कल्चरल स्टेटमेंट देखा। उन्होंने बैंड को साइन किया। इस एक फैसले ने वर्जिन रिकॉर्ड्स को हमेशा के लिए बदल दिया। वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट, मतलब व्यवस्था विरोधी ब्रांड बन गया।
और ब्रांसन ने क्या सीखा?
उन्होंने सीखा कि विवाद को अगर समझदारी से संभाला जाए तो वो पब्लिसिटी और वफादारी दोनों दिला सकता है, और ये भी कि सांस्कृतिक आंदोलनों में बिजनेस की अपार संभावनाएं छिपी होती हैं। वर्जिन एक कॉरपोरेट विरोधी कॉरपोरेशन बन गया।
दूसरा बड़ा मोड़ तो शायद ब्रिटिश एयरवेज के साथ वो लड़ाई होगी।
यकीनन, 90 के दशक का वो डर्टी ट्रिक्स अभियान, जब BNA वर्जिन अटलांटिक के एकाधिकार को खतरा मानकर उसे खत्म करने की कोशिश की, कॉरपोरेट तोड़फोड़ की।
तब ब्रांसन ने क्या किया?
वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से लड़ाई लड़ी, मीडिया का इस्तेमाल किया, मुकदमा दायर किया और जीता भी।
इस अनुभव ने उन्हें कैसे बदला?
वो सिर्फ एक उद्यमी से एक मीडिया प्रेमी कॉरपोरेट योद्धा बन गए। उन्होंने साबित किया कि छोटी कंपनियां भी अगर दृढ़ता और सिद्धांतों के साथ लड़े तो बड़े दिग्गजों को हरा सकती हैं। उन्होंने डेविड बनाम गोलियत कहानी की ताकत और कॉरपोरेट लड़ाई में सच्चाई के महत्व को गहराई से समझा।
और तीसरा मोड़ शायद सबसे दर्दनाक वाला।
हाँ, वो था 2014 का वर्जिन गैलेक्टिक टेस्ट फ्लाइट हादसा, जब उनका स्पेसशिप 2 क्रैश हो गया और पायलट माइकल एल्सबरी की दुखद मौत हो गई। ये ब्रांसन का शायद सबसे काला पेशेवर पल था।
इस त्रासदी को उन्होंने कैसे संभाला एक लीडर के तौर पर?
ये उनके नेतृत्व की असली परीक्षा थी। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली, सार्वजनिक रूप से सामने आए, पीड़ित परिवार का समर्थन किया और सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षा में सुधार का वादा करते हुए अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को जारी रखने का संकल्प लिया, पीछे नहीं हटे।
इससे क्या सबक मिला?
इसने दिखाया कि अत्यधिक दबाव में परिपक्व नेतृत्व कैसा होता है, उन्होंने सीखा कि कुछ सपनों की वास्तविक मानदीय कीमत होती है, विजन और जिम्मेदारी के बीच संतुलन साधना कितना जरूरी है। उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही ने उनके प्रामाणिक नेतृत्व को और मजबूत किया।
ब्रैनसन की इस असाधारण कहानी से, उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव से हम आम लोग क्या सीख सकते हैं? ऐसे क्या मानवीय सबक हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ सकते हैं?
पहला सबक तो है सीमाओं पर काबू पाना, जैसे उनका डिस्लेक्सिया का संघर्ष। ये हर उस इंसान से जुड़ता है जो कभी खुद को कमजोर, अपर्याप्त या अलग महसूस करता है।
हाँ, ये बहुत रिलेटेबल है।
सबक ये है कि आपकी कमजोरियां ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। वैकल्पिक बुद्धिमत्ता, अलग तरह की सोच मूल्यवान है। सफलता का कोई एक तय रास्ता नहीं है, अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है।
और असफलता उनकी जिंदगी में तो वो भी भरपूर रही है, टैक्स वाला मामला, वजन कोला, गुब्बारे वाली विफलताएं, कई बार दिवालियेपन के कगार पर पहुंचना।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि अगर आप कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो असफलता मिलेगी ही। ये इनोवेशन का हिस्सा है। जरूरी ये है कि आप इसे अंत ना समझें,
बल्कि सीखने का अवसर।
हाँ, सीखने का अवसर और जल्दी से उभरने का महत्व। वो कहते हैं ना, व्यावसायिक अवसर बसों की तरह होते हैं, हमेशा दूसरी आती रहती है, रुकना नहीं है।
प्रामाणिकता का सबक भी बहुत गहरा है। उनका व्यक्तित्व ही उनका ब्रांड है।
सही कहा, उन्होंने कभी मुखौटा नहीं पहना। सबक ये है कि असली होना, अपने प्रति सच्चा होना, जीवन और व्यवसाय दोनों में गहरे संबंध और विश्वास बनाता है। दिखावा लंबे समय तक नहीं चलता, प्रामाणिकता ज्यादा प्रभावी है।
और जीवन में रोमांच को गले लगाना, सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि वो बलूनिंग वगैरह भी।
हाँ, ये दिखाता है कि जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए, परंपराओं को चुनौती देनी चाहिए, नए अनुभवों की तलाश करनी चाहिए, अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना चाहिए। वही स्क्रू इट लेट्स डू इट वाली बात।
आखिर में लोगों का महत्व, रिश्ते कितने जरूरी हैं।
उनका परिवार, उनकी पत्नी जोन, उनके बच्चे, नेकर आइलैंड पर उनका घर, ये सब उनके लिए एक मजबूत सहारा रहे हैं। और जिस तरह वो अपने कर्मचारियों पर ध्यान देते हैं, सबक साफ है, सफलता अकेले नहीं मिलती, ये मजबूत रिश्तों पर टिकी होती है। और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना सिर्फ नैतिकता नहीं बल्कि सफलता के लिए मौलिक है।
तो रिचर्ड ब्रैनसन की इस कहानी और हमारी इस बातचीत के बाद अगर हमें तीन सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने हो, तीन बातें जो याद रखी जाएं, तो वो क्या होंगी?
पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि, शर्म को गर्व में बदलना। जैसे ब्रैनसन ने डिस्लेक्सिया की चुनौती को, जिससे शायद वो कभी शर्मिंदा महसूस करते होंगे, अपनी अलग सोच की अनूठी ताकत में बदल दिया। ये याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी मुश्किलें ही अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत का स्रोत बन सकती हैं।
दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि, स्थापित उद्योगों में घुसने का उनका तरीका। उन्होंने सिर्फ कीमत या सुविधाओं पर प्रतिस्पर्धा करने के बजाय ग्राहक अनुभव पर ध्यान केंद्रित किया। ये दिखाता है कि परिपक्व उद्योगों में भी सबसे बड़े अवसर अक्सर उन ग्राहक समस्याओं को हल करने में छिपे होते हैं जिन्हें स्थापित खिलाड़ी नजरअंदाज कर देते हैं।
और तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, प्रामाणिकता दिखावे से हमेशा बेहतर होती है। ब्रैनसन की सफलता इस बात का सबूत है कि सफलता पारंपरिक तरीकों को अपनाने से नहीं बल्कि अपने मूल्यों और अपने व्यक्तित्व के प्रति सच्चे रहने से मिलती है, खासकर तब जब आप दुनिया पर अपना प्रभाव बढ़ा रहे हों।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।